ओम शांति। गुड इवनिंग। तो सभी फ्रेश हैं, बहुत सुन सकते हैं। तो आज के शाम के सत्र में आप सभी का स्वागत है और हमारे बीच आदरणीय स्वामी भाई भी हैं, तो आपका भी हम तालियों से स्वागत करेंगे। और मैं स्नेहा बहन से निवेदन करूंगी कि आप गुलदस्ते से बैज से भाई जी का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है कि दुआ मिले बड़ों से, साथ मिले अपनों से, खुशियां मिले जग से, रहमत मिले रब से, प्यार मिले सब से। तो यही दुआ है प्रभु से कि सब खुश रहे आपसे और आप खुश रहे सब से। तो यही खुशियों की खान स्वामी भाई हैं, आपको खूब हंसाएंगे। और बहुत ऊंचा टॉपिक है कंपैशन इन एक्शन, क्योंकि अक्सर करके रहम दया करुणा ये अक्षर हमने अक्सर दुआओं में सुना है, प्रार्थनाओं और याचनाओं में मांगा है, भावनाओं में उसे महसूस किया है, पर भावनाओं से कर्मों में इसे कैसे लाया जाए, हाउ टू ब्रिंग कंपैशन इन एक्शन। तो इस विषय पर प्रकाश डालने हेतु हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन जी। डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन जी, आपका क्या कहना, आपके इतने सारे डिग्रीज हैं, इतने अचीवमेंट्स हैं, हम थोड़ा पढ़ के सुनाते हैं। आपकी 8 डिग्री है, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक है, डिप्लोमा इन डेल्टा हीलिंग है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ, मास्टर्स इन साइकोलॉजी, मास्टर्स इन काउंसलिंग, मास्टर्स इन योगा, मास्टर्स इन क्राइसिस मैनेजमेंट, PhD इन इमोशनल एंड क्वांटम इंटेलिजेंस। तो इतने सारे डिग्रीज आपने हासिल किए हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप पिछले 26 वर्षों से जुड़े हुए हैं और तब से अपनी सेवाएं देते आ रहे हूं। आप वैसे इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट फैकल्टी रहे हैं 16 सालों से और कॉरपोरेट ट्रेनर रहे हैं 20 वर्षों से। आपको कई अवार्ड से भी आपको नवाजा गया है, जैसे सनराइज पीस अवार्ड, फिर रोटरी क्लब ने भी आपको विशेष अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड नेशन बिल्डर अवार्ड से सम्मानित किया है। इस वर्ष के इंटरनेशनल योगा डे पर राजयोग विषय पर प्रकाश डालने हेतु आपको खास महाराष्ट्र विधानसभा में आपको बुलाया गया और इस पर प्रकाश डालने के लिए आपको कहा गया है। आप बहुत सारे टीवी चैनल्स में भी, टॉक शोज में भी आते रहते हैं, आप सबने देखा ही है, तो आप, मैं समझती हूँ, सब परिचित भी होंगे, सभी ने देखा है स्वामी भाई को अपने चैनल्स में। तो आपकी इतनी विशिष्ट सेवाएं हैं, बहुत विभिन्न क्षेत्रों में आप अपनी सेवाएं देते आ रहे हो, इंडस्ट्रीज में, बहुत अच्छे कॉरपोरेट्स में, HNR जॉनसन लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, हॉस्पिटल्स में, मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस में आप अपनी सेवाएं देते आ रहे हो। तो आपके लिए हम यही कहेंगे, आपके बायोडेटा और आपके कर्मों को देखते हुए हम कहेंगे कि जमीन सलाम करे, आसमान सलाम करे, स्वामी भाई की सेवाओं को देखकर अल्लाह भी सलाम करे, अल्लाह भी सलाम करे। तो लीजिए सुनते हैं स्वामी भाई के मुख से ही कंपैशन इन एक्शन।
ओम शांति। सभी प्यार से बोलिए ओम शांति। गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं आप सभी का आज के इस सत्र में बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। विशेष बहुत खुशी है कि आप सभी टाइम पर इस सेशन में पहुंचे। शुरू करने के पहले मैं जानना चाहूंगा कि सभा में ऐसे कितने भाई बहने हैं जो पहली बार ब्रह्मा कुमारीज में आए हैं, वो जरा हाथ उठाए। अरे वाह, वेलकम वेलकम, आपका बहुत प्यार से स्वागत है। अच्छा ग्रेट, आपने लिए तालियां बजाने का मन कर तो जरूर बजाइए। आप आए तो हो यहाँ पर। अब दूसरा प्रश्न जो है, आप में से कितने भाई बहने हैं जिन्होंने अभी तक हर सत्र को इसी तरह प्यार से अटेंड की, अटेंडेंस दिया है 100%। अरे वाह, कमाल है कमाल है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्योंकि यहाँ पर जब आप आते हो तो ये जस्ट एक सत्संग नहीं है, बेसिकली इट्स विश्वविद्यालय। और इस विश्वविद्यालय में हम सब पढ़ाई पढ़ते हैं। जैसे आप पिछले दो दिन से ये सेशन सुन रहे हो, आपकी तरह आई एम ऑल्सो अ गॉडली स्टूडेंट। और 26 साल पहले मैं इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में इसी तरह के कॉन्फ्रेंस में आया था और मुझे यहाँ आकर बहुत बहुत अच्छा लगा। और उस दिन से हर दिन मैं इस विद्यालय में आकर पढ़ाई करता हूँ। तो जैसे नीरजा बहन बहुत क्वालिफिकेशंस की बात कही, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं राइट, अपने जीवन में नम्रता कैसे लेकर आए, खुशियां कैसे लेकर आए, आनंद में कैसे जीवन जिए। अच्छा आज का जो टॉपिक है, एक बहुत सुंदर टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट कंपैशन इन एक्शन। दया करुणा को हम अपने कर्म में कैसे लेकर आए। मुझे याद आता है कुछ समय पहले मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को जब मैं पढ़ा रहा था तो उनको मैं कंपैशन कैसे समझाऊं, कोई ना कोई मुझे एग्जाम्पल देना होता है उनको। तो मैंने उनको एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, एक सफल व्यक्तित्व है, सक्सेसफुल पर्सनालिटी, एंड सर्टनली वो जो व्यक्ति हैं बहुत है ना दया और करुणा से भरपूर व्यक्ति हैं। तो मैंने कहा बताइए ये सब जो क्वालिफिकेशंस जिस व्यक्ति में है उसका नाम बताइए। तो मेरे स्टूडेंट्स गेस करने लगे, वैज्ञानिक भी है, सफलता भी है और दया करुणा से भरपूर है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको ना उस व्यक्ति का इमेज दिखाता हूँ। और मैंने ये इमेज दिखाया, फिर मैंने कहा बताइए ये कौन है। तो मेरे विद्यार्थी उसको गेस नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने कहा मैं आपको मदद करता हूँ। एक ऐसे वैज्ञानिक और ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने विश्व को अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर गए। कौन है ये? यस, सर थॉमस अल्वा एडिसन। तो मैंने अपने विद्यार्थियों से पूछा, अच्छा बताइए मुझे एडिसन साहब इतने पसंद क्यों आते हैं? तो एक ने कहा सर क्योंकि उन्होंने है ना इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया, इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। मैंने कहा अच्छा और कोई बातें? तो एक ने कहा सर हमने सुना है कि वो हजार बार ट्राई किया और फिर इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण किया। मैंने कहा ये सब तो कॉमन बातें हैं, लेकिन मुझे एडिसन साहब इसलिए बहुत पसंद आते हैं क्योंकि कुछ समय पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था AICT जर्नल में, एंड आई कोट दैट जर्नल फॉर ऑल ऑफ यू। कहते हैं सारा विश्व उस दिन का इंतजार कर रहा था जब ये इलेक्ट्रिक बल्ब का डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है। तो एक दिन पहले एडिसन अपने लैब असिस्टेंट को बुलाते हैं, यंग बॉय, और उसको बल्ब देते हैं और उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्लीज कैरी दिस बल्ब टू द वेन्यू ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, आप ये बल्ब को वेन्यू की तरफ लेकर जाइए। तो ये जो लैब असिस्टेंट लड़का जो था ये बल्ब लेकर उस है ना वेन्यू की तरफ जा रहा होता है और बीच में वो फिसल जाता है और बल्ब चकनाचूर हो जाता है। जब ये समाचार एडिसन तक पहुंचता है तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं, फिर से अपने लेबोरेटरी में जाते हैं, सारा रात काम करते हैं। और दूसरा दिन सुबह जैसे वो अपना लैब का गेट खोलते हैं तो सारी भीड़ इकट्ठा हो गई कि भाई आज डेमो होगा कि नहीं होगा। और जैसे एडिसन के हाथ में एक नया बल्ब देखते हैं तो सभी राहत की श्वास लेते हैं कि आज डेमो जरूर होगा। तो एडिसन क्या करता है, उस भीड़ को देखता है और उस लड़के को उस पर नजर पड़ती है, द सेम लैब असिस्टेंट, बहुत मायूस, वेरी सैड, फीलिंग वेरी लो, डिप्रेस्ड। तो एडिसन उसको इशारे से बुलाता है और जब ये लड़का नजदीक जाता है तो एडिसन क्या करता है, वो बल्ब उसी लड़के को देता है और इंस्ट्रक्शन को रिपीट करता है, प्लीज कैरी इट टू द वेन्यू ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। तो एडिसन का दोस्त साइड में खड़ा था, वो इमीडिएटली एडिसन को कहते हैं, एडिसन हाउ कैन यू डू दैट, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ओनली यस्टरडे दिस बॉय हैज स्मैश्ड योर बल्ब इनटू पीसेस, कल इस लड़के ने आपके बल्ब को चकनाचूर कर दिया था, हाउ कैन यू गिव इट द सेम क्लमजी बॉय। तो एडिसन अपने दोस्त को मुस्कुराते हुए देखकर एक बहुत प्यारी बात कहता है, एडिसन कहता है, यस्टरडे व्हेन द बल्ब वॉज ब्रोकन हिज हार्ट वॉज ऑल्सो ब्रोकन, इट इज ईजी टू क्रिएट अ न्यू बल्ब बट इट इज अ वेरी वेरी ग्रेट चैलेंज टू मेंड अ ब्रोकन हार्ट। कल जब बल्ब टूटा तो इस लड़के का दिल भी टूट गया। एक बल्ब तो हम फिर भी बना सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक टूटे हुए दिल को जोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है, करेक्ट। एडिसन ने सारे विश्व को अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर गए, और शायद हम सभी यहां जो बैठे हैं ना, अगर उस दया, उस करुणा, उस एम्पति, दूसरों की भावनाओं को महसूस करना, उस लड़के ने जबरदस्ती नहीं गिराया था, अगर उस भाव को अगर हम अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं ना, तो हम यहां पर इतने सारे जो लोग हैं ना, इस सारे विश्व में जो दुख और दर्द और अशांति और डिप्रेशन, इनसोमनिया, जो फैला हुआ अंधकार है, उसको हम प्रकाश की तरफ लेकर जा सकते हैं, खास करके वर्तमान समय पर। ये जो पिछले 2 साल के बाद पहली बार ये कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, राइट, हम भी आप लोगों को बहुत मिस किए पिछले 2 साल, और ये 2 साल की जो यात्रा थी कोविड के समय पर, उस समय पर आपने और हमने बहुत महसूस किया कि है ना, अचानक कोई व्यक्ति गुजर जाता है और सारा परिवार इतने दर्द में, शोक में, वो व्यक्ति से मिल नहीं सकता है, अपने बहुत होते हैं, कितने वो उससे स्नेह प्यार करते हैं। तो इस 2 साल में लोगों ने अपनी बहुत दर्द भरी कहानी हमको सुनाई, और इस 2 साल में आपने भी बहुतों ने अनुभव किया होगा। मैं ये 2 साल आई वॉज इन गॉड्स ओन कंट्री केरला। केरला इज अ गुड प्लेस टू स्पेंड योर लॉकडाउन एंड क्वारंटाइन। चारों तरफ बहुत सुंदर प्रकृति है, तो मैं करीब 1.5-2 साल केरला में ही था। तो मुझे याद आता है जब वो पीक लॉकडाउन का समय था, इट वॉज अराउंड मई जून, जब सारी दुनिया घर के अंदर बंद थी, तो मुझे याद आता है कि पापा के लिए थोड़ा सा दवाई खरीदना था मुझे, तो मैं कार लेकर जब मैं दवाई खरीदने के लिए टाउन पर गया, और दवाई खरीदने के बाद, क्योंकि सब मेडिकल शॉप्स तो खुले ही थे, जब मैं वापस आ रहा था, सारा रास्ता हाईवे सब वीरान था, तो एक पुलिस वाले ने मुझे रोका, राइट। तो पुलिस वाले ने रोका और मुझे पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो और क्यों आए हो। तो मैंने कहा, सर ये प्रिस्क्रिप्शन है, पापा के लिए दवाई लेकर आ रहे हैं, क्या घर के नजदीक नहीं है क्या। तो मैंने कहा, सर वो है ना नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं यहाँ आया। तो पुलिस वाले ने कहा, ठीक है चलो जाओ, उसने मुझे परमिशन दिया। फिर उसके बाद मैं हाईवे से होते हुए, घर थोड़ा दूर था, जब मैं आ रहा था, तो एक व्यक्ति ने मेरे गाड़ी को रोका, तो मैंने धीरे से रुक के उसने अपना आई कार्ड दिखाया और कहा कि भाई साहब मैं ना नजदीक वाले एक हॉस्पिटल में मैं सेवाएं देता हूँ, तो आज हमारी वो गाड़ी अभी तक पहुंची नहीं है जो हमको लेकर जाती है, तो आप मुझे गाड़ी में छोड़ देंगे क्या। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है, बैठ जाइए। वैसे भी कोरोना वॉरियर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स का बहुत सारा टीवी में हम देख रहे थे, तो हमने कहा पीछे बैठ जाइए। तो पीछे बैठे, फिर हम घर के तरफ चले, और कुछ समय फिर से एक पुलिस वाले ने रोका। जब रोका तो उन्होंने वही प्रश्न पूछा, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। फिर वो सब इंक्वायरी के बाद उन्होंने पूछा, ये पीछे कौन बैठे हैं। तो मैंने कहा, मुझे तो नहीं पता है कौन बैठे। बोला, अरे तुमको पता नहीं है तो बैठाया कैसे उसको। और उसका वो ना पुलिस का संस्कार उभरने लगा। तो मैंने कहा, सर वो हेल्थ वर्कर है सर, वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो फिर उसने कहा, आपने क्या पढ़ाई की है। मैंने इतना क्वालिफिकेशन तो नहीं बताया। मैंने कहा, मैं प्रोफेसर हूं बेसिकली। अरे प्रोफेसर होकर आप कुछ समझते नहीं हो क्या, आपको चारों तरफ समझ में नहीं आ रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। और उसने मुझे इतना डांटा, बाप रे। और क्या, हम लोग ऐसे प्रकार का डांट सुनने के इतने आदी नहीं होते, क्योंकि हमसे जो भी मिलता है बड़े प्यार और स्नेह से मिलते हैं। तो इतना वो चिल्ला रहे थे। मैंने कहा, सॉरी सर। अरे क्या सॉरी है, तुम समझते नहीं हो। तो मैंने उस भाई को कहा, अब आप उतरिएगा। वो उतरा और मैं आगे चला गया। नेचुरली ये जो सीन जो था, एकदम परफेक्ट सीन था, क्योंकि पुलिस वाला अपना काम कर रहा था। और जब मैं घर में ये पहुंचा, तो मैंने कहा, आज कोई व्यक्ति दया और रहम करना चाहता भी है, तो प्रोटोकॉल कभी कभी अलाउ नहीं करता। ये करीब मई जून की बात थी। एक दो महीने के बाद केरला में एक और घटना घटी। राइट, दिस वॉज अगस्त 7, 2020 की बात है, जब वंदे भारत मिशन चल रहा था। और भारत सरकार का एक वंदे भारत मिशन ये था कि जो भी भारत के निवासी जो सारे विश्व में कहीं अटक गए हैं उनको फ्लाइट से भारत लेकर आया जाए। अगस्त 7, 2020 एक फ्लाइट दुबई से केरला की तरफ आ रही थी, एंड दैट जो उसका डेस्टिनेशन था वो कैलिकट एयरपोर्ट में था। बहुत बारिश गिर रही थी, पायलट ने 2-3 बार चक्कर लगाया कि मैं उतरूं नहीं उतरूं, फाइनली उन्होंने रिस्क लिया और फाइनली वो कैलिकट एयरपोर्ट में लैंड करने की कोशिश किए। आप में से कुछ लोगों ने न्यूज सुना होगा, लेकिन वन ऑफ द लेटेस्ट एक्सीडेंट इन इंडियन एविएशन हिस्ट्री इज दिस अगस्त 7, 2020। पायलट ने ब्रेक लगाया लेकिन वो रुका नहीं और वो स्किड कर गया और करीब है ना 140 से ज्यादा लोग इसमें ना दे पास्ड अवे। अब जैसे ही इस घटना घटी तो अचानक जो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स वो एकदम एक्शन में आ गए। जैसे ही घटना घटी, शाम का टाइम था तो इमीडिएटली गवर्नमेंट अलर्ट हो गई, तो नजदीक के जितने भी हॉस्पिटल्स को बोला अलर्ट में रहो क्योंकि बहुत सारे है ना शायद इंजर्ड पेशेंट्स आपके पास आएंगे। तो जो नजदीक का एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था उन्होंने सबसे पहले देखा कि इतने सारे इंजर्ड पेशेंट्स आएंगे तो डॉक्टर्स तो चलो ठीक है लेकिन ब्लड नहीं है, और ब्लड की इतनी जरूरत नहीं थी तो ब्लड बैंक में उन्होंने इतना स्टॉक भी नहीं रखा था। तो उन्होंने इमीडिएटली पूछा कि सर ब्लड नहीं है तो क्या हम है ना लोगों को ब्लड के लिए रिक्वेस्ट करें क्या। अब पीक कोरोना का समय चल रहा है 2020 अगर आपको याद रहेगा, तो ऐसे समय पर राइट उन्होंने कहा ठीक है अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, ब्लड तो व्यक्ति ही देगा ना, तो बोला आप अनाउंस करो लेकिन जितने हैं सबको अनाउंस करो कि जो भी आएंगे दे शुड यू नो फॉलो कोविड प्रोटोकॉल्स, और जो भी आएगा यहां पर उसका मोबाइल नंबर लिया जाएगा, ईमेल लिया जाएगा, और आपने ब्लड दिया तो आपका 14 दिन आपके परिवार से दूर रहना पड़ेगा और केरला इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। राइट, कुछ भी होता है आप देखते हैं सबसे ज्यादा केरला में ही होता है, इसलिए होता है क्योंकि उसका चेकिंग सिस्टम इज वेरी हाई। आप अगर एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन में उतरोगे तो जब तक आपको चेक नहीं करेंगे वो भेजेंगे नहीं। 2 साल से सारे स्कूल और कॉलेज के प्रोफेसर यही सेवा कर रहे थे, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो चाहे एयरपोर्ट में हो या बस स्टैंड में हो। तो उन्होंने कहा सर अगर हम ऐसा एक प्रोटोकॉल करेंगे तो शायद लोग नहीं आएंगे, और लोग नहीं आएंगे तो हम बचेंगे नहीं। तो गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा डायलमा था कि क्या करना है। तो फिर उन्होंने डिसीजन लिया नहीं चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग अगर प्रोटोकॉल को तोड़ दिया तो जो लोग की हालत खराब हो तो है ही लेकिन दूसरे लोगों को भी वो इफेक्ट करेगा, इसलिए प्रोटोकॉल किसी भी तरीके से वो पालन करना पड़ेगा। तो उन्होंने सब जगह न्यूज में दिया कि हमें ब्लड की बहुत सख्त जरूरत है, आप लोग कोविड प्रोटोकॉल यूज करेंगे, लाइन में आएंगे, और अगर आएंगे तो 14 दिन आप घर से बाहर रहेंगे एंड यू विल बी इन अ गवर्नमेंट क्वारंटाइन। अब ऐसे समय पर राइट देखा गया कि 1 घंटे के अंदर राइट जो नजदीक के कैलिकट में मलप्पुरम है, वायनाड है, कन्नूर है, पूरी भीड़ लग गई, और इतनी लंबी चौड़ी भीड़ थी सब लोग उस कोविड प्रोटोकॉल से। तो मीडिया वाले उनसे पूछ रहे थे अगर आपने ब्लड दिया वो तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो लेकिन आपके परिवार से आपको 14 दिन गवर्नमेंट के उस है ना कैंप में रहना पड़ेगा। और सारे लोग ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा है इस समय पर है ना हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। तो उसमें एक बहुत सुंदर न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट था, फेसबुक में आया, जिसमें लिखा था ह्यूमैनिटी रीगेन, मानवता फिर से जागृत हो गई। डिस्पाइट रेन्स एंड कोरोना स्केयर पीपल रश टू डोनेट ब्लड आफ्टर द केरला प्लेन क्रैश। एक तरफ पुलिस वाले ने स्वामी भाई को रोका प्रोटोकॉल के लिए, और एक तरफ आप देखते हैं उस प्रोटोकॉल को जानते हुए जब वो आपदा आई इतने सारे लोग वहां पर पहुंचे। और उस पूरे घटनाक्रम से एक बात समझ में आई, साइकोलॉजी समझ में आई कि जब भी कोई आपदा आती है ना उस आपदा में हमारे अंदर का जो मानवता है ना वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाता है, हमारे अंदर वो ऑटोमेटिकली वो दया करुणा वो रहम हमारे अंदर है। बस आज हमें इस बात का चिंतन करना पड़ेगा कि क्या हम अगले भूकंप का या कोरोना का या सुनामी का इंतजार करें क्या, या उस दया करुणा को आज हम जीवन में जरूर जरूर लेकर आए। ये एक बहुत सुंदर उदाहरण सारे विश्व के सामने था, और क्योंकि मैं वहां पर मौजूद था तो मुझे ये बहुत अच्छे से देखने को और समझने का एक बहुत सुंदर चांस मिला दोस्तों। करेक्ट। अक्सर करके जब हम दया और करुणा की बात करते तो अक्सर आप देखेंगे जब भी इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो सब लोग को लगता है मैं कुछ तो करूं जाकर। आप और हम जब न्यूज में देखते हैं तो लगता है कि मैं कुछ जरूर करूं। कितनों को ऐसा फीलिंग होता है वो जरा हाथ उठाए। यस। और दूसरा संकल्प ये चलता है कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट शुड आई डू। और कभी कभी हमको लगता है कि हम किस तरीके से मदद करें, धन से मदद करें, किसी को भोजन दें, कपड़ा दें, मेडिसिन दें। लेकिन अगर देखा जाए ना, ये सब जो आप हम करते हैं ना, हम कुछ लिमिट के लिए कर सकते हैं। और इस 2 साल में देखेंगे कितने सारे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई, जिनका बिजनेस रुक गया, बहुत सारे केसेस है जिनकी दुकानें नहीं चली। ऐसे समय पर हम चाहते हुए भी धन से, चाहे कपड़े से, चाहे मेडिसिन से हम सेवा नहीं कर सकते। इसे हम करें तो करें क्या, क्योंकि आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए हो और यहाँ पे हमारे जो परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु व परमात्मा है, जिनका परिचय आज आप अगले सत्र में जरूर सुनेंगे और समझेंगे। परमात्मा को दया और करुणा के सागर कहते हैं। तो परमात्मा की वो प्रोसेस और टेक्नोलॉजी क्या है, वो मदद कैसे करते हैं? हाँ, अक्सर हम भावनावश भगवान के पास जाकर बहुत प्यार से कहते हैं, भगवान मेरी नौकरी लगा दो, भगवान मेरे को प्रमोशन दिला दो, भगवान मेरी शादी करा दो, भगवान मेरे घर में बच्चे आ जाए। ये बोलना ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए तो भगवान कैसे मदद करता है। इनफैक्ट हमारे पास जो है वही हम दूसरों को दे सकते हैं। अगर भगवान को किसी को नौकरी देनी ही है तो हर बच्चे को नौकरी देना चाहिए। आपको पता है कल और आज ना यूपीएससी का सिविल सर्विस का मेन एग्जामिनेशन चल रहा है और मुझे हर दिन रात को फोन आता है। बड़े प्यार से वो स्टूडेंट भी फोन करता है, उनके माता पिता भी फोन करते हैं, स्वामी भाई कल मेरे बच्चे का यूपीएससी का मेन एग्जाम है, आप उनके लिए प्रार्थना करना, आप इनसे जरा 2 मिनट बात करना। और मुझे बात करके बहुत अच्छा भी लगता है और मैं हमेशा कहता हूं प्रे फॉर यू। लेकिन अगर सच्चाई में देखा जाए सिर्फ एक बच्चे को परमात्मा कैसे यूपीएससी क्लियर करे, करना है तो सभी को करना चाहिए ना। जैसे इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्फ। करेक्ट। तो हमको ये समझ आनी चाहिए कि परमात्मा के रिसोर्सेस क्या हैं। तो परमात्मा जो है वो करुणा और दया का वो सागर है, सर्वशक्तिवान है, उनके पास 3 रिसोर्सेस है। और इसी प्रोसेस को अगर हम समझ जाएं तो हम बहुत प्यार से अपने जीवन में उसको एक्शन प्लान में लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले परमात्मा को ज्ञान सूर्य कहा जाता है, उनके पास ज्ञान का वो स्टॉक है। दूसरा, परमात्मा को गुणों के सागर कहते हैं, गॉड इज एन ओशन ऑफ वैल्यूज। और तीसरा, परमात्मा जो है वो शक्ति के स्रोत है। ये परमात्मा के पास रिसोर्सेस है। परमात्मा से अगर आप पूछोगे भगवान रोटी कपड़ा मकान दो, बेसिक जरूरत क्या होती है, आपने पुराने जमाने में फिल्म देखी होगी, कौन सी फिल्म का नाम क्या था, रोटी कपड़ा और मकान। एक बार मैंने स्टूडेंट से पूछा, बोला सर ये तो पुराना फिल्म हो गया, अभी नया फिल्म। मैंने कहा नया फिल्म का क्या स्क्रिप्ट है, बोला सर रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल सर। मैंने कहा हाँ, मोबाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल के बिना तो हमारा जीवन होता ही नहीं है। तो भगवान से हम रोटी मांग रहे हैं, हम कपड़ा मांग रहे हैं, हम राइट मकान मांग रहे हैं, हाउ कैन गॉड गिव इट टू अस, नॉट पॉसिबल। तो रियल समझ ये है कि ज्ञान के सूर्य हैं, गुणों के सागर हैं, शक्ति के स्रोत हैं। तो अगर हमें दया और करुणा को जीवन में अप्लाई करना है तो ये रिसोर्सेस परमात्मा से लेना है और सबको देना है। और जब हम ये करने लगेंगे ना तो आप लगेगा यस यू आर ऑन द पाथ ऑफ राइटियसनेस। तो टीवी में बैठकर अगर हम कहीं भूकंप और लैंडस्लाइड देख रहे हैं ना तो हमको मालूम रहता है कि हमें करना क्या है। इस समय पर हम वो असहाय महसूस नहीं करते। करेक्ट। सबसे पहले एक ज्ञान, और वो कोरोना वायरस को आना पड़ा इस ज्ञान को हम सब तक के पहुंचाने के लिए। कोरोना वायरस आने के पहले जब हम एक दूसरे से मिलते थे ना तो बड़े प्यार से पूछते थे हाउ आर यू, आप कैसे हो। जब से ये वायरस आया ना तो लोग आजकल मास्क पहनते हैं, तो वायरस आते ही साथ हमारा वो कॉन्शियसनेस भी शिफ्ट हो गया। हम लोग पता हाउ आर यू नहीं पूछते, पता क्या पूछते, हु आर यू, भैया वो कौन, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति कौन है हमको समझ ही नहीं आता है। और यही राजयोग में पहला ज्ञान की बिंदु है। और शायद आज सुबह के सत्र में आपने ये जाना होगा, तो अगर मैं आपको बहुत प्यार से पूछूंगा आप कौन हो तो क्या जवाब देंगे? हाँ राइट। और यही बहुत इम्पोर्टेंट है इंग्लिश में, है ना। राजयोग इज सो सिंपल। आप इंग्लिश में सभी बोलिए आई, थोड़ा जोर से बोलिए, नहीं नहीं डराइए नहीं ना, थोड़ा प्यार मोहब्बत से बोलिए ना, सेल्फ कंपैशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो बड़े प्यार और मोहब्बत से बोलिए आई, और थोड़ा प्यार और मोहब्बत भरिए आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल, आगे बोलिए। ये राजयोग जो है ना, इट इज अ एलकेजी सिलेबस। हम सब यहाँ जो बैठे हैं ना, हम चमकते हुए एक सितारे हैं। और ये समझ पता क्यों जरूरत है? ये समझ इसलिए जरूरत है क्योंकि विश्व में जो सबसे बड़ा जो डर का कारण है, एंड दैट इज द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय, फियर ऑफ डेथ। मैं आपको अपना ही अनुभव सुनाता हूं। बहुत वर्ष पहले, ये 2005-06 की बात है, जब स्वामी भाई को पता चला कि स्वामी भाई की मम्मा इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, रिपोर्ट आया। जब कैंसर पता चला, हाँ प्रश्न मन में ये प्रश्न जरूर उठता है कि मम्मा को कैंसर क्यों हुआ, लेकिन अब सेकंड प्रश्न ये उठता है कि मम्मा लेटे हुए हैं, दर्द में हैं, उनको आप दया करुणा कैसे दिखाएंगे? हाउ विल यू एक्सप्रेस? मम्मा से बहुत प्यार तो है, मम्मा से बहुत स्नेह तो है, लेकिन ऐसे समय पर हम उनको, हमें क्या बोलना चाहिए? तो मुझे याद आता है उस समय पर हमको लगा कि इनको थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान, हम थोड़ा बहुत तो बोलते थे, लेकिन जब उस सिचुएशन में होते हैं तो मुझे याद आता है 2004-05 की बात है, जब हमने उनको इसी तरह कॉन्फ्रेंस में लेकर गए। और मुझे बहुत दिन बहुत अच्छी तरह से याद है कि मैं बैठा था, मम्मा बैठी थी, पापा बैठे थे, तो जैसे ही हमारे आदरणीय उषा दीदी जो उस समय आत्मा का परिचय दे रहे थे, और जैसे ही परिचय दे रहे थे तो मम्मा ने मुझे धीरे से बोला, स्वामी हम कभी मरते नहीं है क्या? मैं कहा मामा यही तो समझने की बात है। 7th स्टैंडर्ड बेसिक फिजिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हम एक मिनट, ये ट्रैफिक कंट्रोल है, हम दो मिनट परमात्मा को याद करेंगे।
योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तुआज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तुआज। चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का
योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा योगी जीवन है प्यारा योगी जीवन है प्यारा
ओम शांति। ट्रैफिक कंट्रोल में आपने सुना योगी बनो ज्ञानी बनो, वियोग अर्थात बिछड़ना, योग अर्थात संबंध जोड़ना। सबसे पहला हमें अपने आप से संबंध जोड़ना जरूरत है, और अपने आप से संबंध जोड़ने के लिए ज्ञानी बनना है। और क्या ज्ञान और समझ चाहिए? कि हमें शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति है। करेक्ट। मुझे याद आता है इस 2 साल में कितने लोगों को कोरोना हुआ, कितने लोगों ने फोन किया, तो मैंने कहा आप जूम पर आ जाइए। तो जूम पर वो अकेले बैठे रहते थे क्योंकि परिवार चाहते हुए भी मिल नहीं सकता था, और मुझे बहुत प्यार से मन को ये राजयोग सिखाता था और मन को यही बताता था आप महसूस करो कि आप आत्मा हो, अमर हो, अविनाशी हो। और आपने देखा होगा जो जितने भी लोगों की जिन्होंने शरीर छोड़ा, बहुत सारे कारण हो सकते लेकिन एक कारण कॉमन था और वो था डर, भय, फियर। जैसे ये जो समय जो चल रहा है ना, राइट, इतना ज्यादा डर का माहौल है, और अगर किसी को किसी के प्रति दया दिखानी है तो हमारे अंदर वो सही ज्ञान और समझ होना जरूरी है। अक्सर लोग कहते हैं स्वामी भाई ये सब तो ठीक है लेकिन चारों तरफ इतना हलचल है, ऐसे समय पर दया और करुणा मिसमैच होता है। मुझे याद आता है 26 वर्ष पहले जब मैं इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आया ना, तो मैं भी इसी संकल्प से आया कि ये दुनिया कलयुग दुनिया है और ये इसको कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर आकर मुझे समझा समय का एक बहुत सुंदर चक्र 4 युगों को दिखाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और इस विद्यालय में आकर मुझे एक चीज पता चला कि जैसे प्रकृति का नियम है कि हर रात के बाद एक नया सवेरा आ रहा है आता है, उसी तरह अगर आज कलयुग है तो एक नया सवेरा जरूर आएगा। आप में से कितने लोगों को लगता है कि दुनिया परिवर्तन होकर एक अच्छी दुनिया, स्वर्ग, कृष्णपुरी, जन्नत, हेवन बनना चाहिए? वो जरा हाथ उठाओ। वाह, बहुत अच्छा, करेक्ट। अगर ऐसी सुंदर दुनिया हमें इस धरती पर लेकर आना है तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हम जो दया और करुणा को जो महसूस कर रहे हैं ना, वो नई दुनिया को बहुत जल्दी नजदीक लेकर आएगा। यस, हम एक डिस्ट्रक्शन के क्लाइमैक्स में जा रहे हैं। आप लोग भी न्यूज सुनते हैं, स्वामी भाई भी न्यूज सुनते हैं, मुझे भी पता है दुनिया में क्या चल रहा है, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, चाहे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस है, या धर्म के नाम पर सब कुछ चल रहा है। लेकिन जब हम ये न्यूज देखते हैं ना, तो परमात्मा ने जो आकर ज्ञान सुनाया है ना कि बच्चे एक गहरी अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आएगा, उस नया सवेरे को लेकर अगर हम काम कर सकते हैं, दैट इज रियल एम्पथी। दूसरी बात, तीसरी बात, हम ये जो किसी के प्रति दया और करुणा करते हैं ना, किसी पर मेहरबानी नहीं करते, हमको लगता है हम बहुत बड़ी मेहरबानी करें, नहीं। और मैं हमेशा अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, वैसे हमारे स्टूडेंट्स को ना न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ याद नहीं रहता है, लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत प्यार से उनको याद रहता है। व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ? अरे वाह, आप लोग तो बड़े बुद्धिमान हो। करेक्ट। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, इसे कहते हैं लाइफ इज एन इको, है ना, प्रतिध्वनि है। हम जो भेजते हैं वो ऑटोमेटिकली हमको मिलता है, कभी ना कहीं, कहीं ना कहीं। नो राइटियस एक्शन गोस वेस्ट। और ये समझने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छे से एक वीडियो दिखाता हूं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप इस वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा। गीत इंग्लिश में है लेकिन वो जो पिक्चर्स जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये एक बहुत सुंदर सुरक्षा कवच है क्योंकि हम सभी ट्रांसपोर्ट विंग से जुड़े हुए हैं और हमारे लिए सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सारे विश्व में एक बहुत अच्छा मूवमेंट चल रहा है सेफ्टी को लेकर, सुरक्षा कवच को लेकर। और ये सुरक्षा कवच के लिए वो क्या बताते हैं, लेट्स वॉच दिस वीडियो। ऑडियो करेंगे भैया, लाइट को ऑफ कर सकते हैं। Because kindness keeps the world afloat.
Sometimes I live under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity is around, I know.
को चेन रिएक्शन कहा जाता है। इसी व्यक्ति ने स्टार्टिंग में उस बच्चे को मदद किया, घूमते 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 वो मदद उसको ही मिला। हाँ, थोड़े समय के बाद जरूर मिल सकता है। आज की इस दुनिया में भी द चेन रिएक्शन ऑफ पॉजिटिविटी इज रिक्वायर्ड. जैसे न्यूक्लियर में चेन रिएक्शन होता है ना, तो जो केमिकल काम होता है वो एक क्रिटिकल लिमिट पहुंचना चाहिए. जैसे वो क्रिटिकल लिमिट पहुंचता है फिर वो ऑटोमोड पर गाड़ी चलती है. तो सारी दुनिया में इतनी नेगेटिविटी है आप और हम जानते हैं, लेकिन यहां पर आप आए हैं परमात्मा के घर पर, दया और करुणा को आप एक्सपेरिमेंट करिएगा और फिर आप देखिएगा जीवन में इतने सुंदर जादू और जीवन में इतने सुंदर चमत्कार होने लगते हैं. तो पहला जो है परमात्मा जो है वो ज्ञान का सूर्य है, वो समझ. तो तीन बातें हमने देखी, एक मैं आत्मा हूं, स्मृति में रहना, जिसे जो आने वाले समय पे जो लोग डरे हुए हैं भय में हैं उसको आप जागृत कर सकते हैं. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक अच्छा समय आने वाला है. और तीसरा हम जो कर्म करते हैं वापस हमको जरूर मिलता है. दूसरा परमात्मा जो है वो गुणों के सागर है, इज एन ओशन ऑफ वैल्यूज. और अगर मैं आपको बताऊंगा ना कोई व्यक्ति कितना गुणवान है अगर समझना है ना, तो बस उसके साथ उसको गाड़ी में बैठ जाओ आप. और साइकोलॉजी कहता है एक व्यक्ति कैसे गाड़ी चलाता है उससे पता चल सकता है वो व्यक्ति का आंतरिक प्रकृति कैसी है. आपको मैं एक बहुत प्यारा सा सुझाव देता हूं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हमें फोन करते और कहते स्वामी भाई हमारे बेटी के लिए हम लड़का ढूंढ रहे हैं, बेटे के लिए कन्या ढूंढ रहे हैं, तो भाई किस प्रकार का लड़का लड़की होना चाहिए. और आजकल के जमाना में तो बेटा बेटी अपने हिसाब से है ना वर को और जीवन साथी को सेलेक्ट कर लेते हैं. मैं आपका काम बहुत इजी कर लेता हूँ है ना, शादी.com matrimony.com कहाँ कहाँ एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं. बहुत सुंदर है अगर आपकी कन्या किसी होवनार वर को लेकर आते हैं, बस आप उनके साथ बैठ कर ना, उनको कहो गाड़ी चलानी आती है, वो कहेगा हाँ, बस उसके साथ में साइड में बैठ कर ड्राइव कर उसको ड्राइव पर लेकर जाओ. आधा घंटे में वो व्यक्ति कैसा गाड़ी चलाता है उससे आपको पता चल जाएगा ये व्यक्ति की साइकोलॉजी कैसी है. ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. और ऐसे बहुत सारे जो मोटर इंडस्ट्रीज हैं उसमें एचआर लोग इस प्रकार का सिलेक्शन करते हैं. तो अगर आप अपनी कन्या के लिए वर को ढूंढ रहे हो ना, तो उसको गाड़ी पे लेके जाओ. सबसे पहले उसको देखो कि अगर वो बैठते ही साथ अगर उसने सीट बेल्ट लगाया, मतलब वो अपनी सुरक्षा के बारे में ध्यान रखेगा, आपकी बेटी भी सुरक्षित रहेगी. पहली बात. दूसरी बात, अगर वो गाड़ी चला रहा है और अगर वो बार बार हॉर्न मार रहा है, तो बेटी को बड़े प्यार से कहो दूसरे को ढूंढो भाई. क्योंकि अगर वो बार बार हॉर्न बजा रहा है तो कुछ समय के बाद आपकी बेटी आपको कहेगी मैंने खुद सिलेक्शन किया, लेकिन 24 घंटे वो हॉर्न बजाता रहता है. करेक्ट, हॉर्न बजाना. मुझे याद आता है एक महीने पहले मैं इंडियन नेवी का प्रोग्राम कर रहा था न्यू दिल्ली में. तो जब सेशन खत्म हुआ तो जो कमांडेंट साहब थे वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए आए और उसने कहा, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उस समय पे ना लाउड स्पीकर को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा था महाराष्ट्र में, विशेष लाउड स्पीकर बजाना चाहिए नहीं बजाना चाहिए, कितना डेसिबल होना चाहिए. उस कंटेक्स्ट में उसने कहा कि मैं पिछले 15 सालों से मैं अपना गाड़ी चलाता हूं, आज तक मैंने हॉर्न नहीं बजाया. एनी वॉज अ नेवी कमांडर. जब सेशन खत्म हुआ तो मैंने उस नेवी ऑफिसर के पास गया, मैंने कहा पहली बार मैंने किसी व्यक्ति को ऐसे बोलते हुए सुना सर. बोला हाँ 15 साल तक मैंने हॉर्न नहीं बजाया. मैं कहा सर आपकी इस बात को मैं अपने जीवन में लेकर आना चाहता हूँ, लेकिन मैं केरला में रहता हूँ तो केरला के ना बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं तो वहां सेफ्टी के हिसाब से तो हॉर्न बजाना पड़ेगा. तो उसने बड़े मुस्कुराते हुए कहा स्वामी भाई मैं करीब 5 वर्ष है ना कोच्ची में था और हम लोग सब जगह घूमने जाते थे अपनी गाड़ी को लेकर, चाहे वो तेकड़ी हो चाहे मुन्नार हो चाहे वो आलापुरा बैकवाटर्स हो, वहां पर भी मैंने ध्यान रखा कि मैं कभी हॉर्न नहीं बजाऊंगा. मैं कहा सर एक काम करता हूं मैं भी जरा केरला में जाकर ट्राई करता हूं, लेकिन फिर भी अगर सामने बोला अगर आपको लग रहा है आपको हॉर्न नहीं बजाना है, तो एक तो आप संकल्प से सामने वाले व्यक्ति को सचेत करोगे और दूसरा आपकी स्पीड बहुत कम होगी, स्पीड बहुत कम होगी. और खुशी की बात है कि जब से मैं उस नेवी कमांडेंट से मिला केरला में जाता हूं राइट, मैंने इसको 95% तक मैं उस स्थिति पर पहुंच गया. अभी स्वामी भाई के लिए थोड़ा तालियां बजा सकते हो. यस, तो आज यहां पे ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवलिंग में आए हो ना, आप जब गाड़ी में बैठेंगे आप हॉर्न से बचना. और इसलिए बचना है क्योंकि आपके संस्कार फिर आपके बेटे को आएंगे, फिर शादी भी करानी है ना बेटे की, क्योंकि आजकल बच्चे भी बड़े बुद्धिशाली हो गए.
करेक्ट.
यस. कोई व्यक्ति अगर बहुत बार अगर वो हॉर्न बजा रहा है, साइकोलॉजी इज उनका पर्सनालिटी ही वैसी है. तीसरा, अगर आप अपने होवनार उस कन्या के वर को आप बिठा रहे हो और गाड़ी चला रहे हो, और अगर कोई व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा है और अगर उसने रोका और उनको जाने दिया, तो इमीडिएटली बच्ची को बोलो, बच्ची आज चाहिए तो शादी करवा देते, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा है, कि वो दया और करुणा उसको ऑटोमेटिकली जीवन में दिखाई देता है. ड्राइविंग एक्चुअली रिफ्लेक्ट द इनर पर्सनैलिटी, ये बहुत बहुत जरूरी है. राइट. कुछ लोग पूछेंगे, स्वामी भाई वो तो ठीक है लेकिन कन्या का सिलेक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल है. आज तो सभी लोग है ना 18 वर्ष के ऊपर सभी लोग ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं, तो मैं आपको दो फोटोग्राफ दिखाता हूँ. राइट. कौन सी कन्या को आप सेलेक्ट करेंगे आप जरा देखना, कौन सी बच्ची आपको पसंद आती, पहली या दूसरी? यस. जो रोड पर थोड़ा सा हो गया तो आप देखते हैं द वे पीपल बिहेव एंड रिएक्ट. करेक्ट. रोड रैश इज अ मेजर प्रॉब्लम. ठीक है. और इसके लिए एक चीज, अगर हमें दया और करुणा को लेकर आना है तो एक चीज आज हम संकल्प करें. ऐसे ड्राइविंग करते वक्त ऐसे सिचुएशन में नहीं आता है, लेकिन घर में एक बहुत बड़ी बात का ध्यान रखना है, वो है एंगर, गुस्सा. आप में से कितने लोग हैं जिनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, वो जरा हाथ उठाएं. अरे वाह, अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, कितने लोग हैं जिनको आप पर गुस्सा करने से आपको बड़ा आनंद की अनुभूति होती है, वो जरा हाथ उठाओ. नहीं नहीं, नहीं. हमारे ऊपर कोई गुस्सा करे तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता गुस्सा. और एक परिवर्तन जो मैंने अपने जीवन में देखा, करेक्ट, 26 वर्ष के इस सुंदर यात्रा में स्वामी भाई हैज बिकम मच मोर पीसफुल, लवफुल. एंगर जो है ना बहुत हद तक कम हो चुका, और ये बहुत प्यार से ये अभ्यास होता है दोस्तों. वैसे जब भी एंगर आए ना तो एंगर के सामने एक डी लगा दो, तो एंगर के सामने डी लगाने से क्या होता है? डेंजर. मैं करीब 2.5 महीने पहले आई वॉज डूइंग अ प्रोग्राम फॉर द CISF, तो सारे जवान बैठे थे, तो और क्या ये CISF वाले जो होते हैं ना, उनको इतना गुस्सा आता है कोई कारण कुछ बनेगा तो अपने ही गन से अपने ही बॉस को मारने लगते हैं. दे आर कॉल्ड एज केसेस ऑफ फैट्रीसाइड. तो जब मैं वहां उस वेन्यू में पहुंचा तो मैंने सबसे पूछा कि भाई आपको गुस्सा आता है, तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था. तो मैंने कहा बताओ ना गुस्सा आता है क्या? तो कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट बैठे थे. मैंने कहा सर इनसे पूछे गुस्सा? हाँ पूछो पूछो स्वामी भाई. तो मैंने कहा आप लोगों को गुस्सा आता है? तो सबने कहा हाँ. तो हमने कहा किस पर गुस्सा आता है? कोई बोल नहीं रहा. मैंने कहा बताओ ना. बोला सर सच्ची बात बताएं. मैंने कहा हाँ. बोला कमांडेंट पर ही सबसे ज्यादा गुस्सा आता है. मैंने क्यों भाई कमांडेंट पर क्यों गुस्सा आता है? बोला सर छुट्टी नहीं देते. तो मैं कमांडेंट बैठे थे. मैंने कहा सर रिपा इनको छुट्टी क्यों नहीं देते, आप छुट्टी दो ना. बोला सर मैं क्यों इनको रोक के रखूं, लेकिन सर इतना सारा हमको मैसेजेस मिलते हैं कि है ना यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, ये है सिक्योरिटी स्केयर है, ये है, हमारे पास रिसोर्सेस कम है, हम चाहते हुए भी छुट्टी नहीं दे सकते. तो मैंने उस जवान को कहा देखो सर चाहते हुए भी आप नहीं कर सकते ना, आप उनकी बात को भी थोड़ा समझो. बोला हाँ सर. मैं कहा चलो बॉस छुट्टी नहीं देते हैं, कमांडेंट छुट्टी नहीं देते, गुस्सा आना स्वाभाविक है, घर पर बच्चों पर तो गुस्सा नहीं करना चाहिए ना. सबने कहा. मैंने कहा आप में से कितने लोग हैं जो घर पर बच्चों पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करते, वो जरा हाथ उठाओ. मैंने वो ऑडियंस से पूछा, एक ने हाथ उठाया. मैंने कहा बच्चों पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करते? बोला नहीं सर. मैंने कहा गुस्सा बिल्कुल नहीं करते? नहीं सर आज तक मैंने नहीं किया. मैंने कहा मैं घर पर फोन करके पूछूंगा, सर आप पूछ लीजिए, मैंने आज तक बच्चों पर गुस्सा नहीं किया. तो मैंने उनके जो सभी साथी थे मैंने कहा इनके लिए जरा जोर से तालियां बजाओ. सबने तालियां बजाई. फिर मैंने धीरे से पूछा सचमुच बच्चे पर गुस्सा नहीं किया? बोला नहीं सर आज तक नहीं किया. मैंने कहा कितने वर्ष के बच्चे? बोला सर 8 महीने की छोटी बच्ची है सर. मैं खड़ा हो जाऊं? हाँ जी सर. मैंने कहा 8 महीने की छोटी बच्ची है, कितने समय से कमांडर ने छुट्टी नहीं दी? बोला सर 6 महीने से मैं पूछ रहा हूँ बच्ची को देखने जाओ. बोला 8 महीने में 6 महीने यहाँ पड़े हो और फिर करते गुस्सा नहीं करते हो? मैंने कहा वो 8 साल तक होगी तो गुस्सा करोगे? नहीं सर. 18 वर्ष तक? नो सर. और सारे जवानों को काम पर लगा दिया, 108 वर्ष तक बच्ची को लेकर गए. बच्ची पर गुस्सा कर रहे हो मतलब कहीं ना कहीं आप संकेत दे रहे हो कि मैं मन से बहुत कमजोर हूं. करेक्ट. और इसको ठीक करने के लिए क्या करना है? बहुत सिंपल है. जैसे अंधेरा होता है ना, अंधेरे को निकालने के लिए आप बल्ब जलाओ, उसी तरह अगर गुस्सा आ रहा है इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन में दिव्य गुणों की कमी है, राइट? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे याद आता है एक बार मैं छोटे छोटे बच्चों को मैं सेशन ले रहा था, और एक हफ्ते का वो उनको मैं शिविर ले रहा था, बच्चों का समर कैंप। तो मैंने बच्चों को कहा, बच्चे एक महीने तक, एक हफ्ते तक, एक महीने का, एक हफ्ते का प्रोग्राम था, मैंने कहा एक हफ्ते तक चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों अपने माता पिता पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, बिल्कुल जिद नहीं करना, माँ को बहुत स्नेह देना, प्यार देना, और हर दिन अपने मम्मा पापा से एक साइन लेकर आना। अगर एक हफ्ता अगर आप लेकर आओगे तो सातवें दिन आपको जो हमारे बड़े दीदी जी हैं वो आपको गिफ्ट देंगे। बच्चे तो गिफ्ट सुनकर बड़ा अच्छा लगता है उनको, बोले यस सर, यस सर। एक हफ्ता बहुत सारे बच्चों ने उनके माता पिता ने साइन करके लेकर आए। हमारा तो इंटेंशन था सभी को गिफ्ट दें, सभी को भी गिफ्ट दिए। अच्छा, दूसरे साल फिर हमारा ये समर कैंप हुआ तो सब जगह है ना नोटिस भेजा। तो एक बच्ची मेरे पास आई और कहा, स्वामी अंकल पिछले साल मैंने वो बच्चों का प्रोग्राम अटेंड किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, इस साल भी मैं अटेंड करना चाहूंगी। मैंने कहा जरूर अटेंड करो, क्योंकि बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं बच्चों के साथ, खेलना कूदना, दौड़ना, पेंटिंग, तो बच्चों को अच्छा ही लगता है। तो बोला सर मैं इस साल भी अटेंड करना चाहूंगी, लेकिन आपसे मैं एक छोटा रिक्वेस्ट करती हूँ। मैंने कहा बताइए क्या रिक्वेस्ट है? बोला सर पिछली बार जो माँ के लिए होमवर्क दिया था ना, इस साल मत देना। मैंने कहा क्यों? बोला सर सच्ची बात बताऊं? मैंने कहा बताइए। बोला सर मेरे को अगर कुछ पैसे की जरूरत होती थी, जैसे मुझे चॉकलेट खरीदना है, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, एक फ्रॉक खरीदना है, तो मैं मम्मा से पैसे मांगती थी, तो मम्मा मुझे नहीं देती थी, तो मैं क्या करती, एकदम गुस्से में आ जाती थी, एकदम जिद्दी बन जाती थी, आई यूज टू प्ले ऑल काइंड ऑफ टैंट्रम्स, एकदम जिद्दी स्वभाव, भोजन नहीं करती थी, तो मम्मा को इतना गुस्सा आता था जोर से चाटा लगाती थी। फिर थोड़े देर के बाद बड़े प्यार से वो मुझे पैसे दे देती थी। लेकिन सर पिछले साल का अनुभव था, आपने कहा एक हफ्ते तक एकदम पीसफुल, लवफुल, चीयरफुल, दया, करुणा, रहम। एक हफ्ते के बाद मैंने महसूस किया कि मेरी मम्मा अति इंद्रिय आनंद में थी, लेकिन मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। एंड अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज व्हाई शुड आई बिकम गुड? कोई फायदा नहीं हो रहा है। पहले थोड़ा जिद करो, चाटा ले लो और फिर आइसक्रीम खा लो, इजी है ना, शॉर्टकट है। एक हफ्ते तक, अब जैसे उस बच्ची ने कहा, बाप रे, मैं सोचा बच्ची को मैं जवाब क्यों दूं और क्या दूं जवाब। 20 वर्षों से मैं बच्चों को कह रहा हूं बच्चे अच्छे बच्चे बनो, गुस्सा मत करो माता पिता पर, अब ये बच्ची कह रही है कि व्हाई शुड आई बिकम गुड, कोई फायदा नहीं हो रहा है। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और मैं सबसे फोन करके पूछने लगा कि मैं इस बच्ची को जवाब क्या दूं, राइट? बहुत लोग कह रहे हैं कि आप उसको धीरज रखने के लिए बोलो ना, तो मैंने बोला बच्ची धीरज रखो, राइट? बोले स्वामी भाई आप मेरे है ना मम्मा को नहीं जानते हो, मैं कितना धीरज रखूं, मेरा आइसक्रीम पिघल जाएगा ना सर। अब बहुत कुछ चीज बोलने लगा, बहुत बोले, उसका चेहरा एकदम कड़क, और मैं उसका चेहरे को रीड कर रहा था वेदर शी इज कन्विंस्ड विद द आंसर और नॉट। फिर हमारे एक दोस्त ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया, ही स्पोक अबाउट द यू नो बैलेंस शीट ऑफ लाइफ। बोला स्वामी भाई ये बैलेंस शीट ऑफ लाइफ है, आप अपने हिसाब से उनको बता दीजिएगा। मैंने उस बच्ची को बुलाया, मैंने कहा आपको बेसिकली पैसे चाहिए थे? बोला हाँ, पैसे से मुझे चॉकलेट, आइसक्रीम, फ्रॉक खरीदना था। मैंने कहा अच्छा बच्ची, आप जब रस्ते से जाते हो ना तो चौराहे पर कुछ बच्चे दिखाई देते, कुछ चीज मांग रहे होते हैं, कुछ चीज बेच रहे होते हैं, तो आप में और उन बच्चे में अंतर क्या है? तो फटाक से जवाब दिया, बोला अंकल उनके पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। मैं कहा नहीं, आप तो स्टूडेंट हो ना, आप तो पैसे कमाते नहीं हो ना। नहीं, मेरे पापा के पास पैसे हैं। मैंने कहा कभी सोचा आपने कि ऐसे परिवार में आप क्यों जन्म लिया जिनके माता पिता इतने संपन्न हैं? तो सोचने लगी। फिर मैंने उनको कहा, बच्ची दो प्रकार का धन होता है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको और हमको लगता है अगर धन होगा तो ही हम सेवा कर सकते हैं, इस पर चिंतन करना जरूरत है। एंड दिस फाइनेंशियल लिटरेसी वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, और अपने बच्चों को जरूर जरूर बताना। तो मैंने कहा दो प्रकार का धन होता है, एक होता है स्थूल धन और दूसरा होता है दिव्य धन। मैंने कहा एक हफ्ता आपने मम्मा को बहुत स्नेह, प्यार, दया, करुणा, आपको स्थूल धन नहीं मिला, लेकिन उस एक हफ्ते में मम्मा इतनी आनंद में थी, आपको बहुत दुआएं मिली, ब्लेसिंग, आशीर्वाद। और फिर मैंने उस बच्ची को कहा, इस जन्म में आप इतने अच्छे परिवार में जन्म लिए क्योंकि आपको पिछले जन्मों का दुआओं का वो स्टॉक था, अब इस जन्म में ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप कितना वो दुआओं का स्टॉक जमा कर रहे हो। और जैसे ही मैंने कहा ना तो उसको समझ आने लगी। फिर मैंने उनको डॉक्टर कलाम सर का एग्जाम्पल बताया। बचपन में बहुत गरीब थे, न्यूज़पेपर बेचते थे, राष्ट्रपति बने। 5 साल के राष्ट्रपति के बाद सबसे ज्यादा उन्होंने बच्चों को अपने राष्ट्रपति भवन में बुलाया। और जब वो रिटायर हुए तो उनके पास 2 सूटकेस थे। एक सूटकेस में उनके बहुत सारी किताबें थी, दूसरे सूटकेस में उनके ड्रेस थे। और जब डॉक्टर कलाम सर इस धरती से आगे की यात्रा पर गए तो कितना उनको दुआओं का स्टॉक था। जैसे ही मैंने बोला शी अंडरस्टूड इट। मुझे लगा कि मैं अपने एमबीए फाइनेंस बच्चों को ये बताऊं। जब मैंने एमबीए फाइनेंस बच्चों को दिव्य धन के बारे में बताया तो एक ने खड़े होकर कहा, सर हमारे बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट स्थूल धन के बारे में बताया जाता है। पहली बार अपने दिव्य धन के बारे में बताया। दुआओं का स्टॉक जमा करो। सर थैंक यू वेरी मच। 2 दिन के बाद जब मैं उनके क्लास में फिर से गया तो एक स्टूडेंट ने कहा, सर मुझे दिव्य धन का अनुभव आपको शेयर करना है। मैंने कहा बताइए। बोला, सर उस दिन आई वॉज सो मोटिवेटेड बाय योर यू नो दिस एग्जाम्पल ऑफ दिव्य धन। जैसे ही मैं लोकल ट्रेन मुंबई में चढ़ा, मुंबई के लोकल ट्रेन में इतनी भीड़, अचानक मुझे सीट मिल गई। फिर मैंने सोचा मुझे सीट क्यों मिली। हाँ, मेरा दिव्य धन का स्टॉक अच्छा था। फिर मुझे संकल्प आया कि मुझे दिव्य धन का स्टॉक बढ़ाना चाहिए। तो उस बोगी में एक बहुत वृद्ध व्यक्ति, सीनियर सिटीजन थे, मैंने उनको बुलाया, नजदीक बुलाया, मैं खड़ा हुआ और उनको सीट दिया। सर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं रुक जाइए फिर तालियां बजाना, आगे मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे दिव्य धन बनाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। बोला, सर उस सीनियर सिटीजन को सीट तो दे दिया, थैंक यू तो छोड़ो, मुस्कुराया भी नहीं। सर इतना दिल को ठेस पहुंचा, मुझे समझ में आ गया ये कलयुग है, ये दया करुणा ना सुनने सुनाने तक ठीक है। मैं कहा माय डियर बॉय, ये दिव्य धन का फिलॉसफी ये है कि आपने सीट दिया राइट, आपका दिव्य धन का स्टॉक बढ़ गया, लेकिन अगर वो धन्यवाद देते देते ना तो आपका दिव्य धन थोड़ा कम हो जाता था ना। बोला, सर रियली। मैंने कहा यस। बोला, सर एक काम करता हूँ, आज फिर से उस लोकल ट्रेन में चढ़ूंगा और उस सीनियर सिटीजन को पकड़ूंगा और उसको धन्यवाद दूंगा कि उस दिन धन्यवाद नहीं दिया जिसके कारण मेरा दिव्य धन इंटैक्ट हो गया। yes. सुबह से शाम तक हम लोग जो काम करते हैं ना विथ एक्सपेक्टेशन। बचपन से मैंने बच्चों को पाला है, अभी मेरे बुढ़ापे में मेरा ध्यान देना चाहिए। जब ये एक्सपेक्टेशन होता है, दिस इज वॉट वी हैव टू ओवरकम। और आज आप यहां पर आए हो ना, यहां पे जितने भी आपने सेवाधारियों को देखा, चाहे बैक स्टेज पर हो, जब आप वहां पर है ना अबू रोड स्टेशन में पहुंचे तो शायद आपको गुस्सा आता होगा, मैं आधा घंटा से रुका हूं, अभी तक गाड़ी आई नहीं है, मुझे तो गाइड वाले ने बताया था स्वर्ग है, मैं 1 घंटे से यहां बैठा हूं। गुस्सा आया होगा करेक्ट। भोजन पर भी शायद आपको गुस्सा आता होगा, शायद कमरा ऊपर नीचे है, लेकिन आपको ये देखना है कि जितने भी यहां पर जो सेवा कर रहे हैं ना, None of them have been paid. किसी को पेमेंट नहीं दिया जाता है। yes. लेकिन यहां जितने लोग सेवा कर रहे हैं ना, वो बड़े बुद्धिमान हैं, इंक्लूडिंग स्वामी भाई। और मैं जानता हूं कि जितना मैं निस्वार्थ ईश्वरीय सेवा करूंगा, वो स्थूल धन तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलने वाला है वो है बहुत दुआएं। तो जितना आप दुआओं का स्टॉक जमा कर सकते, उतना ये जन्म में आपकी खुशी बढ़ेगी, लेकिन आगे वाला जन्म भी बहुत प्यारा और श्रेष्ठ होगा। करेक्ट। यस। और लास्ट जो है वो है शक्ति। तो एक है ज्ञान, दूसरा है गुण और तीसरा है शक्ति। और शक्ति के लिए वैसे हम शरीर की जब शक्ति की बात करें ना, तो शरीर का भी ध्यान रखना बहुत जरूरत है, क्योंकि कहते हैं जान है तो, थोड़ा जोर से बोलिए, जान है तो जहान है। एक बार मैं इंडियन नेवी को प्रोग्राम कर रहा था, तो जब मैंने कहा जान है तो, एक कैडेट खड़े होकर कहते सर जहाज है, एंड द कमांडर राइट आंसर राइट आंसर। तो जहाज का भी ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरत है, सेल्फ केयर राइट। और एक चीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप सचमुच इस जहाज का अगर ध्यान रखना चाहते हैं और अगर आप सचमुच इस दुनिया को आप सुधारना चाहते हो, खास करके प्राकृतिक आपदाओं से, तो एक चीज, ये आपका चॉइस है, आपका ऑप्शन है, आप करें या नहीं करें, ये आपकी स्वतंत्रता है। आफ्टर ऑल भारत जो है आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं दया और करुणा को लेकर आने के लिए हमारा भोजन शुद्ध सात्विक शाकाहारी होना चाहिए। pure vegetarian food. Yes. Correct. अगली बार टीवी में आप देखते हैं बैंगलोर में फ्लड आ गया, पाकिस्तान डूब रहा है, राइट, दुबई डूब रहा है, राइट, लंदन डूब रहा है, और हम घर में बैठकर, और केरला में भी फ्लड आता है, उत्तराखंड में भी आता है, जब आप उस टीवी को बैठकर देखते हो ना, कि टीवी में देखते देखते न्यूज देखते हो ना, तो न्यूज के बाद एक मिनट में अपने भोजन की थाली को देखना। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस कहता है कि अगर कोई व्यक्ति एक हफ्ते में हर दिन अगर वो नॉनवेज खाता है, अगर एक दिन भी अगर वो शुद्ध शाकाहारी भोजन करेगा, तो प्राकृतिक आपदाओं को आप कम करने के निमित्त बन सकते हो। उसका कैसे होता है वो आप कभी वेबसाइट में जाकर, है ना, इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज IPCC, जिनको दो बार नोबेल पीस प्राइज मिला है, उसके रिपोर्ट को आप देखना। आपका भोजन का थाली में जो आप खाते हो वो प्राकृतिक आपदाओं के लिए निमित्त बनता है। और आज मैं आपको खुशखबरी देता हूं, इस संसार में बहुत अच्छे लोग हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लियोनार्डो डा विंसी, पाइथागोरस, प्लेटो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, मार्क ट्वेन, कार्ल लुईस, मार्टिना नवरातिलोवा, मोहम्मद अली, अमिताभ बच्चन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी जी एंड स्वामी भाई। सब में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है? अरे यार ये कौन सी बड़ी बात है, सब बड़े बुद्धिमान है। यस, क्योंकि हम थोड़े बुद्धिमान हैं, हम समझते हैं जहाज को कैसे ध्यान रखना है, और विशेष तौर पर प्रकृति का कैसे ध्यान रखना है। नॉनवेज खाना ये नहीं खाना आपकी चॉइस है, अगली बार आप खाएंगे तैयार रहिएगा। फिर जब बैंगलोर में, केरला में जब पानी डूबेंगे ना, तब पश्चाताप करके कोई फायदा नहीं। और आज के समय पर मैं आपको खुशखबरी देता हूं, हमारे भारत के जो सबसे हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ भारत, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, और खास करके हमारी, है ना, द्रौपदी मुर्मू जी, राइट, आपको पता होगा, कुछ आपने व्हाट्सएप में वीडियो में देखा होगा, वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से काफी वर्षों से जुड़े हैं। और मुझे याद आता है मैं उनसे मुलाकात किया आज से करीब 10 साल पहले, व्हेन शी वाज द गवर्नर ऑफ झारखंड, एंड वी वर देयर इन अ माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस। और उस समय वो तो गवर्नर चीफ गेस्ट थे, लेकिन जब वो स्टेज पर आकर उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, मैं हर दिन ना राज्यों का अभ्यास करती हूँ, तब मुझे पता चला कि वो भी इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़े। आज सारा विश्व जानता है। NDTV में एक बहुत अच्छा रिपोर्ट था, जिस दिन उसका स्वेयरिंग इन सेरेमनी हुआ, उसके दूसरे दिन NDTV में रिपोर्ट था कि उनके गांव से, वो ट्राइबल एरिया के ओडिशा के गांव से करीब 50 लोग उनसे मिलने के लिए आए, देवर एस्टीम्ड गेस्ट ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। तो हमारी द्रौपदी बहन जी ने कहा कि उनको, है ना, राष्ट्रपति भवन दिखाना है। पूरे राष्ट्रपति भवन में घुमाया गया, और NDTV रिपोर्ट करता है कि उन सभी गेस्ट के लिए द्रौपदी बहन ने कहा इनको शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन मिलना चाहिए। अगर हमारे देश के राष्ट्रपति इस बात को अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं, उस दिन मुझे बता रहा था कि जब हमारे, जब उनका स्वेयरिंग हो रहा, तो हमारे विद्यालय के वरिष्ठ भाई बहने पहुंचे, तो उन्होंने कहा मैं ऐसा भी रूल बनाने वाली हूं, कभी कोई फॉरेन गेस्ट भी आए तो राष्ट्रपति भवन में, है ना, मांसाहारी और शराब नहीं। तो अगर खाना है तो वो नजदीक 5-स्टार होटल में है, वहां जाइए। धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन को भी शुद्ध सात्विक बनाना, करेक्ट। ये छोटा सा परिवर्तन हम जरूर जरूर अपने में कर सकते हैं। जब आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करेंगे तो इसका मतलब हमारे अंदर वो शक्ति ऑटोमेटिकली बनेगी। दूसरा जो है वो है संकल्प करना, प्लेज लेना। तो आज के समय पर, क्योंकि हम लोग, है ना, एक श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि हम सभी कोई ना कोई प्लेज ले, प्रतिज्ञा करें। तो आप मेरे साथ इस प्रतिज्ञा में जुड़ना चाहेंगे? जो जुड़ना चाहेंगे वो हाथ उठाएं। वाओ, तो कैन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टैंड अप, ये माइक को थोड़ा सीधे कर दीजिए। बहुत समय से बैठे हैं ना, तो आप खड़े हो जाएंगे बहुत प्यार से। तो मैं यहाँ पे रीड करूंगा और आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। तो मैं एक आधा लाइन रीड करूंगा, आप इसमें देख सकते हैं, फिर आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। हम करेंगे सब पर करुणा दया। बोलिए, लेते हैं संकल्प आज, इस सुंदर संकल्प से हम बदलेंगे सारा समाज। तभी अपना हाथ सामने रखिए। हम दुनिया के हर मानव से करेंगे अपनेपन से बात, मन वाणी और कर्म से किसी को नहीं पहुंचाएंगे घात। अब यहां पे हाथ रखिए दिल को। हर धर्म के सम्मान में रखेंगे संभाव का अंदाज, हम करेंगे सब पर करुणा दया, लेते हैं संकल्प आज। दोनों हाथ जोड़ के रखिए। मौन रहकर प्रभु स्मृति से जग में रोज शांति फैलाएंगे, हम प्रकृति का करेंगे आदर, शुद्ध पर्यावरण बनाएंगे। फिर से हाथ सामने रखिए। रहम भाव और क्षमा भाव का पहनेंगे हम ताज, हम करेंगे सब पर करुणा दया, लेते हैं संकल्प आज। दिल में रखिएगा। उनके लिए भी रखेंगे हम कल्याण का दिल में भाव। ये थोड़ा टफ है लेकिन हो जाएगा, करना पड़ेगा। कितनों को लगता है कि दुनिया बहुत जल्दी सतयुग जन्नत आनी चाहिए, वो जरा हाथ उठाओ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। फिर हाथ दिल में रखो, ये थोड़ा टफ है लेकिन करना है, राइट। उनके लिए भी रखेंगे हम कल्याण का दिल में भाव, जो करते हैं सदा ही हमसे एक दुखदाई बर्ताव, राइट। और फिर दोनों हाथ को जोड़िएगा। जिंदगी के सफर में सुखदाई होगी अपनी आवाज, हम करेंगे सब पर करुणा दया, लेते हैं संकल्प आज। थैंक यू। ओम शांति। बैठिए। ओम शांति। अब ये संकल्प को राज्यों की भाषा में बीज कहा जाता है, संकल्प का बीज। लेकिन ये बहुत सुंदर वृक्ष होने के लिए, राइट, इसको थोड़ा सा पानी देकर इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। संकल्प तो किया, लेकिन संकल्प जीवन में आने के लिए, राइट, क्या करना पड़ेगा। एक बहुत सुंदर सिस्टम है यहाँ पर, जैसे मैं ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि कहीं पर भी ट्रेनिंग होता है ना, तो ट्रेनिंग तो कर लिया और आपको अच्छा भी लगता है, अच्छी बात है, ट्रेनर बताता है, लेकिन उसको एक्शन में लेकर आने तक, वो बीज को फलीभूत होने तक के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इसलिए आज शाम को जब ये प्रोग्राम चल रहा है तो शांतिवन के कैंपस में हमारा एक बहुत सुंदर एक और विंग है, विच इज कॉल्ड एज अ रूरल विंग, ग्रामीण प्रभाग, और करीब 4,000 से 5,000 गांव के लोग और खास कर साइंटिस्ट ऑल एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वो सब आज पहुंचेंगे और अभी इस समय इनॉग्रेशन चल रहा होगा। तो उनको बहुत प्यार से ये बताया जाता है कि जब आप बीज बोते हो ना, तो उसमें हर दिन अच्छे संकल्प भी करेंगे तो वृक्ष की जो राइट प्रोडक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। ये तो रिसर्च की बात है, ये तो रूरल विंग के हिसाब से है। लेकिन आज जो हमने दया और करुणा का संकल्प किया ना, उसको भी हर दिन बहुत स्नेह प्यार से पानी डालना, और उसके लिए एक बहुत सुंदर सिस्टम ब्रह्मा कुमारी में है, जिससे हमारे उस संकल्प को शक्ति मिलती है और उसको हम लोग कहते हैं मुरली, करेक्ट। जब आप यहाँ पर 3 दिन का जब शिविर हो जाता है, जब अपने सेंटर पर जाएंगे, या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन आप एक हफ्ते का पूरा राज्यों का कोर्स करिएगा, और राज्यों के कोर्स करने के बाद वहां की सेंटर की बहन जी आपको कहेंगे हर दिन मुरली सुनना। जब मुझे पहली बार बताया गया था कि मुरली सुनना, तो मुझे लग रहा कोई म्यूजिक होगा, फ्लूट होगा, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि ये ज्ञान की मुरली है जिसमें आत्मा में धीरे धीरे शक्ति भरती है, और हर दिन पूरे 110 देशों में ये जो मुरली है एक साथ अपनी अपनी भाषा में बताया जाता है, राइट। और ये बहुत सुंदर सिस्टम है। जैसे आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, हमारे आदरणीय दादी जानकी जी 104 ईयर्स इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के पूर्व एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, 104 वर्ष की दादी जी भी हर दिन मुरली सुनती थी। शायद जब ये मुरली सुनेंगे तो आपको इमीडिएटली समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे आपके संकल्प में इतनी दृढ़ता आ जाएगी। और दादी जी हमेशा कहते, फॉर मी दिस इज माई गॉडली स्टूडेंट लाइफ, ऑलवेज फील दैट इन दिस लाइफ आई मस्ट ऑलवेज बी लर्निंग। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताकर हम लोग 2 मिनट का मेडिटेशन कर वाइंड अप करेंगे। मुझे याद आता है कुछ वर्ष पहले मैं एक जगह शिविर कराने के लिए गया था, तो नए लोग थे तो उनको मैं राज्यों का धीरे धीरे मैं शिविर बता रहा था। तो 3 दिन का इसी प्रकार का जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो हमने उनको कहा एडवांस कोर्स के लिए आप सेंटर पर जाकर राज्यों का एक हफ्ते का कोर्स करिएगा और मुरली सुनिएगा। मैं बोल के तो मैं आ गया, लेकिन जब ये 3 दिन मैं उस शिविर में था ना, तो एक युगल, राइट, वो हमेशा आते थे, हस्बैंड वाइफ थे, यंग कपल, और वो हमेशा बहन जी कहती थी आपका सेशन मुझे अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, और वो हमेशा कहती थी कि मैं उस स्कूल की टीचर हूँ, केंद्रीय विद्यालय की वो टीचर थी, तो बार बार कहती थी स्वामी भाई आप हमारे बच्चों से आकर मिलो, बच्चों से आकर थोड़ा सा मेमोरी कॉन्सेंट्रेशन पर सेशन दो। सुबह शाम दोनों आकर स्टेज पर आकर बोलने लगे, तो मैंने कहा चलो एक दिन इनके स्कूल में चक्कर लगाते, तो मैं उस स्कूल में गया, बच्चों से भी मिला, ठीक है। शिविर करने के बाद जब मैं वापस आया तो बीच बीच में फोन करती थी, तो मैं इनको बोलता था कैसे चल रहा है, बहुत अच्छे चल रहे हैं, आज भी आपके बच्चे आपको बहुत प्यार से याद करते। तो मैं पूछता था आपने है ना राज्यों किया मुरली सुना, स्वामी भाई मैं जाऊंगी अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, ठीक है ओके। हर एक की अपनी स्वतंत्रता होती है। इट वॉज 1st January, अरे मुझे साल ठीक से याद नहीं है, मेरे ख्याल से उसको 5-10 साल हो गए हैं। तो करीब दोपहर के समय पर उनका फोन आया। अब 1st January को किसी का फोन आता है तो नेचुरली हमको लगता है वो हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए फोन किया। तो मैंने फोन उठाया और मैंने कहा, उनका नाम लेकर कहा, मैंने बहन जी आपने फोन किया, आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। वो बोलने के पहले मैंने बोला, देखा कि उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। तो थोड़ी देर मैंने फिर पूछा क्या हुआ, हैप्पी न्यू ईयर आप बोलते क्यों नहीं हो, तो एकदम सन्नाटा। तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, मैंने कहा क्या हुआ, कुछ नहीं बोल रहे। फिर मैंने पूछा कुछ हुआ बताओ ना स्वामी भाई को क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने देखा, मैंने सुना कि बहुत जोर से रो रही है। तो फिर मैंने उसको शांत किया, मैंने कहा बताओ ना क्या प्रॉब्लम क्या है आपका, व्हाट हैपेंड अब स्वामी भाई को प्लीज बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो फिर उसने कहा कि उन्होंने अपने है ना हस्बैंड का नाम लिया और कहा आप उनको जानते हो ना, वो भी हमारे साथ है। मैंने कहा हाँ। बोला कल वो शाम को बाइक से आ रहे थे ऑफिस से घर और उनके एक्सीडेंट हो गई और कल शाम को वो गुजर गए, अभी अभी उनका अंतिम संस्कार हुआ है, उसके बाद मैं आपके पास। तो मुझे आज पूरा दिन इतना मैं रोई, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं किया, आपकी याद आई इसलिए मैंने आपको फोन किया। अब जैसे ही ये समाचार मिला तो मैंने उसको कहा ठीक है, देखो उसका नाम लेकर मैंने कहा बहन जी आप जानते हो ना आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा का पाठ पूरा हुआ, भले कारण कोई भी निमित्त बना लेकिन वो आगे की यात्रा में ना, तो आप रो नहीं, आप उनको बहुत प्यार से है ना शांति का, प्रेम का और शक्ति के वाइब्रेशन दो, ताकि वो आत्मा है ना एक नए घर में माँ के गर्भ में जन्म ले सके। आप जितना यहाँ पे दुखी होंगे वही वाइब्रेशन वहां तक जाएंगे। तो बस सुनी और फिर मैंने कहा मैं कल आपको फोन करूंगा। दूसरा दिन मैंने फिर फोन किया उनको, मुझे लगा इनको ना हेल्प की जरूरत है, तो मैंने फिर फोन किया, फिर मैंने उनको थोड़ा सा बताया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, लेकिन मैं कब तक ये बात बताऊं, मैं क्या बोलूं हर दिन। और मुझे मालूम था वो इतनी शौक में है, इस समय उसको शौक से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो फिर मैंने परमात्मा से पूछा, मैंने कहा मैं क्या हर दिन बोलूं, आत्मा अमर है वो तो बोल दिया, उसको मालूम भी है, अब मैं क्या करूं। फिर अचानक मुझे याद आया द बेस्ट संजीवनी बूटी मुरली। बस हर दिन मैं पता क्या करता था, वो मुरली अपने हाथ में लेता था, 4 पेज का मुरली है, आप कभी देखेंगे, राइट,
वो चार मीठे बच्चे, परमात्मा बहुत प्यार से कहते मीठे बच्चे, तो चार पेज की मुरली में जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो मैं उनको सुनाने लगा, 5 से 10 मिनट हर दिन. एंड आई डिड इट फॉर मोर देन 3 मंथ्स. धीरे धीरे हर दिन मैं उनको उस टाइम पर फोन करता था. आज देखो परमात्मा ने आप बच्ची के लिए कौन सा संदेश दिया है, मीठे बच्चे करके सुनाता था. और जब वो सुनते थे वो इतने खुश होते थे. और धीरे 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 ये संजीवनी बूटी ने उन पर काम किया एंड शी टोटली रिकवर्ड. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस संसार में बहुत लोग के परिवार आगे गुजरते हैं, लेकिन मैंने देखा इतने वर्षों के बाद भी वो दुख और दर्द को अपने साथ लेकर चलते. लेकिन इस विद्यालय में मैंने देखा कि धीरे धीरे उस आत्मा के प्रति बहुत स्नेह और प्यार है, लेकिन उस स्नेह प्यार के साथ जब दर्द जुड़ जाता है ना, तो हम भी दुखी होते हैं. वो आत्मा जिस नई घर में गए हैं उनको भी आप दुखी करते हैं. इसलिए आप देखेंगे जैसे ही बच्चा जन्म लेता ना, आप उनको देखेगा, कुछ बच्चे होते बहुत खुश होकर मुस्कुराते हैं और कुछ बच्चे एकदम सीरियस हो जाते हैं. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आत्मा जो आई है ना इस सोल कॉन्शियस स्टेज पर, राइट, वो नए घर पर नए माता पिता के साथ इतने जुड़े नहीं है. उनको सारी पुरानी स्मृतियां याद आती है, वो सारे वाइब्रेशन कैच करते हैं. इसीलिए इस विद्यालय में बहुत प्यार से बताया जाता है कि जब भी कोई आत्मा आगे की यात्रा पर जाए उनको बहुत शांति, प्यार और पॉजिटिव वाइब्रेशन से. जैसे उस दिन इंटरनेशनल योगा डे में कोई मुझसे पूछ रहा था इस राज्यों का द आर्ट ऑफ लिविंग, तो हमने कहा राज्योग इज नॉट जस्ट द आर्ट ऑफ लिविंग, इट इज ऑल्सो द आर्ट ऑफ लिविंग. अब घर जाना है. कौन सा घर? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता नहीं, वो परम धाम. और आप सबको मैं खुशखबरी देता हूँ, राइट, हम सभी आत्मा इस परम धाम में जाएंगे और एक बहुत सुंदर दुनिया इस धरती पर आने वाली है, जहाँ सुख होगा, शांति होगा, आनंद होगा, बहुत सुंदर प्रकृति होगी. तो एक बार मैं बच्चों को सेशन ले रहा था, एक बच्चों ने कहा सर, राइट, मैंने कहा उनको कहा बहुत सुंदर प्रकृति होगी, तो बच्चे सारे घूर के देख रहे थे. मैं कहा बच्चों कैसी दुनिया आने वाली है, क्या हेल्थ होगा, वेल्थ होगा, हैप्पीनेस होगा, बच्चों के चेहरे में इमोशंस ही नहीं आ रहे थे. मैंने कहा बच्चों एक ऐसी दुनिया आने वाली है जहाँ एग्जाम और पढ़ाई का टेंशन भी नहीं होगा. सर वो दुनिया कब आएगी सर? मैंने कहा लेकर आनी पड़ेगी. तो आप में से कितनों को अपने बच्चों के प्रति और पोतरे पोतरों के प्रति बहुत स्नेह प्यार है, वो जरा हाथ उठाओ. हाँ, तो उनके लिए एक नई दुनिया लेकर आनी पड़ेगी. तो पढ़ाई बहुत आनंदपूर्ण होना चाहिए, स्टडी शुड नॉट बी फुल ऑफ टेंशन एंड स्ट्रेस. और ये पढ़ाई जो है यहाँ पर आप जरूर जरूर पढ़ सकते हैं. तो मैं आपका भी बहुत प्यार से स्वागत करता हूँ और आप अपने बच्चों को भी जरूर लेकर है ना इस विद्यालय की पढ़ाई जरूर जरूर पढ़िएगा. चलिए 2-3 मिनट हम बहुत प्यार से एक यात्रा पर बैठेंगे. सभी सीधे बैठे. और ये जो राज्यों की जो यात्रा है ना, ये मन के द्वारा हम यात्रा करेंगे, करेक्ट. और इस राज्यों की यात्रा में क्या करेंगे, मन को अपना एक बहुत अच्छा दोस्त बनाकर मन से बात करेंगे. जैसे कभी कभी होता है ना, कभी कभी आपका एकदम मूड ऑफ हो जाता है, कारण कुछ भी बना, एकदम मूड ऑफ, कुछ से बात करने का मन नहीं करता है, कुछ भोजन करने का मन नहीं करता है. अचानक आपको एक फोन आता है, अननोन नंबर. तो जब आप फोन उठाते हो तो सामने वाला व्यक्ति पूछता है पहचाना क्या? तो आप पूछते भाई कौन बोल रहे हो? अरे बचपन के दोस्त को भूल गए, बचपन की सखी को भूल गए. तो आप क्या करते हो, मन के द्वारा आप यात्रा करते हो उस बचपन के समय को. फिर आप पूछते आप कौन बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो? तो वो आपको बताते नहीं हम आपके साथ ही बैठते थे, एक ही साथ बैठते थे, एक ही साथ हम लोग है ना साइकिल में स्कूल में जाते थे. सब बताते बताते अचानक यू आर एबल टू आइडेंटिफाई, अच्छा आप ये बोल रहे हो, कहाँ पर हो, कैसे हो. और 5-10 मिनट आप उनसे इतने अच्छे से बात करते हो, इतना अच्छा लगता है. जब आप फोन रखते हो, जिस परिस्थिति के कारण हमारा मूड आउट हुआ था वो परिस्थिति वैसी की वैसी है, लेकिन आप महसूस करेंगे आप मन से बहुत हल्के हो जाते. यस और नो? तो आपने क्या किया, उस सिचुएशन से अपने मन को वहां से डिटैच कर ऐसे जगह लेकर गए जहां पर आपका मन है ना हल्का फील करे. वो आपकी दोस्त हो सकती है, वो आपकी सखी हो सकती है. लेकिन सोचने की बात है आज के समय पर ऐसे दोस्त और सखी हमें कहां मिलेंगे, और शायद उनके पास वक्त भी नहीं है. तो राज्यों कहता है हम अपने मन को एक बहुत अच्छा दोस्त और सखी बनाकर मन के द्वारा हम यात्रा करें, राइट. और इसलिए मन से बात करना है तो मन की भाषा जानना जरूरत होगा. तो मन की भाषा बताइए कौन सी है?
मन की भाषा है चित्र, इमेजेस। इसे आत्मा के ना तीन फैकल्टी बोलते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि उसका चित्र बनाता है, और मन बुद्धि को लेकर हम जो कर्म करते हैं वो हमारे संस्कार। जब का फर्स्ट सिलेबस था, तो एक काम करते हैं, अगला एक मिनट हम एक यात्रा पर जाएंगे। सबसे पहले हम एक बहुत प्यार से सूर्योदय को देखेंगे। सूर्योदय, सुबह सुबह का सूर्योदय कौन सा रंग का होता है? अर्ली मॉर्निंग सनराइज कौन सा रंग का होता है? ऑरेंज। और बताइए, हाँ येलो, रेड। ठीक है ठीक है, बस बस आपने जो रंग बताया ना उससे स्वामी भाई को पता चल गया कि आप सुबह कितने बजे उठते हो, पता चल गया। अरे जब जागे तब सवेरा। लेकिन आप सचमुच अगर विश्व के प्रति थोड़ा दया करुणा रखना चाहते हो, सचमुच आप अपने घर के वास्तु हीलिंग करना चाहते हो, तो रात को जल्दी सो और जल्दी उठो। जैसे ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में द वेकअप कॉल इज 3:30 AM, 3:30 बजे यहाँ के भाई बहन उठते। मुझे बड़ा आश्चर्य था जब मैं पहली बार यहाँ पर आया, लेकिन इतने वर्षों से आज वो हमारा एक संस्कार बन गया है। इट हैज बिकम माय रूटीन, मुझे अलग से कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, राइट? आप ऐसे संग के साथ रहोगे तो धीरे धीरे हमारे संस्कार बहुत, सुबह जल्दी उठकर है ना, अपने को आत्मा समझकर, परमात्मा को याद कर सारे विश्व को अच्छे वाइब्रेशन देना। द ग्रेटेस्ट राइट एग्जाम्पल ऑफ कंपैशन विच यू कैन डू, हमारे मनसा जो सेवा आप कर सकते हो, ठीक है? और यही आज का जो समय की पुकार है। तो मन के द्वारा अगले एक दो मिनट हम यात्रा करेंगे, तो बहुत प्यार से हम एंड करेंगे। आराम से बैठे, रिलैक्स होकर बैठे। चलिए हम एक बहुत सुंदर यात्रा पर चले, और यही यात्रा मन और बुद्धि के द्वारा। मन का काम है संकल्प करना, और बुद्धि का काम है चित्र निर्माण करना। यहां बैठकर मैं सुबह सुबह का सूर्योदय देखता हूं, अर्ली मॉर्निंग सनराइज। पहाड़ी के पीछे से लाल रंग का सूर्योदय, सूर्योदय आशा और विश्वास का प्रतीक कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन और बुद्धि से उस सूर्य के प्रकाश को धीरे धीरे अपने में आते हुए देखिए। लाल रंग का सूर्य का प्रकाश मेरे शरीर को स्पर्श कर रहा है, मैं स्वस्थ हूं। स्व के अस्तित्व में टिकना, स्वस्थ। इस जहाज का कैप्टन प्रकृति के बीच में मैं चमकता हुआ सितारा। मन बुद्धि से महसूस करें, मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मैं ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, और मैं शक्ति स्वरूप। मन और बुद्धि से अपने आप को गाड़ी में ड्राइव करते हुए देखिए। सीट बेल्ट पहने हैं, बहुत शांति और प्यार से गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल हॉंक नहीं कर रहे, और गाड़ी के सामने कोई भी आता है तो मैं उनको रास्ता देता हूं। अगर मैं गाड़ी में बैठकर यात्रा कर रहा हूँ तो यात्रा खत्म होने के बाद उस सारथी को देखिए, मुस्कुराते हुए उनका धन्यवाद दीजिए। मन और बुद्धि से एक मिनट में अपने घर पहुंच जाइए। धीरे से घर का दरवाजा खोलिए। घर में सभी अपने परिवार के सदस्यों को देखिए और जो प्रतिज्ञा की है उसको जीवन में लेकर आइए। न दुख देना है न दुख लेना है। मेरा व्यवहार बहुत मीठा होगा, मैं किसी पर क्रोध नहीं करूंगा। अगर ये मैं करता हूं तो मेरा दिव्य धन बढ़ता है। मन और बुद्धि से बहुत प्यार से परमात्मा जो परम रक्षक है उनका धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे वापस आ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को सामने लेकर आइए। हाथों में श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें, दिव्य धन बड़ा, इसलिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ सक्सेस। दोनों हाथ को जोड़िए, फिर से हाथ जोड़िए, एक दूसरे से मुस्कुराते हुए ओम शांति बोलिए। भोजन लेट होगा तो कितने लोग गुस्सा बिल्कुल नहीं करेंगे, वो हाथ उठाए। अच्छा, आते वक्त तो गुस्सा आया था, अबू रोड में एक घंटा खड़े होना पड़ा। जाते वक्त अगर आप थोड़ा लेट होगा तो कितने लोग मुस्कुराते हुए रहेंगे, वो हाथ उठाओ। कितने लोग घर में भी पहुंच कर भी इसी तरह आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।